विद्यादि सागर छुटी, जो विद्यादि सागर छुटी गुरु ने हिते की, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने, पूजू है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजू है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज रास्ते में चले जा रहे हैं और या किसी की दुकान में कोई चीज खरीदने गए हो और उसने पुड़िया लगा करके दी हो और घर आकर के सामान निकाल करके कभी कभार देखने में आ जाता है कि बड़ा अच्छा सा कागज है, पढ़ करके देखते हैं तो लगता है किसी कहानी का कागज, और पलट करके पूरा पढ़ करके देखते हैं तो लगता है इसके पहले थोड़ी कहानी रही होगी, इसके बाद भी कोई कहानी रही होगी, बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो कि क्या होगा इस कहानी। एक पन्ना हाथ में है सिर्फ कहानी का, पूरी कहानी हाथ में नहीं है, आगे पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला कुछ भी मालूम नहीं, जिंदगी हाथ में हमारे, इसके पहले क्या हुआ, क्या भी क्या होने वाला हाथ में, कब से हम चलना शुरू किए और कहां तक हम चलते चले जाएंगे, कहां से हमने यात्रा शुरू की, कहां तक हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है, शायद हम में से किसी को भी नहीं मालूम। बहुत बेबूज लगती है इस तरह से जब जिंदगी के बाबत कभी सोचते हैं, एक कहानी के बाबत तो हम बहुत जल्दी सोच लेते कि इसका आगे पीछे कैसा होगा, लेकिन कभी बैठ करके अपनी जिंदगी के बाबत नहीं पहुंचा कि कब से हमने शुरुआत की, जीना कब से शुरू किया, कब से हम जिंदा हैं इस तरह, अपनी जिंदगी के बाबत भी नहीं मालूम, कई की जिंदगी बीत गई उनके बाबत तो मालूम होने का सवाल ही नहीं उठता, कई बार तो हमने इस तरह का एक सिद्धांत बना लिया कि इसके पहले हम थे ही, पुनर्जन्म वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता कि हम इससे पहले रहे होंगे। हमें अपनी एक जिंदगी के बाबत भी नहीं मालूम, हमें अपने माँ और पिता के बाबत भी नहीं मालूम कि यही है कि और दूसरे तो नहीं है, वो तो पता है गया कि यही है इसलिए यही मानती है। बहुत छोटी सी हमारी जिंदगी और उसमें हम सब जानते हैं, सोचते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्या वजह है कि हम अपनी जिंदगी के बाबत नहीं जान पाते, अपने बाबत नहीं जान पाते, आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर किसने हमें पकड़ के रखा या हमने किसी को पकड़ करके रखा, दो ही बातें हो सकती कि जो हमारा नहीं था या तो हमने उसे पकड़ लिया, या जो हमारा नहीं था उसने हमें पकड़ लिया, या तो संसार ने हमें पकड़ के रखा या हमने संसार को पकड़ के रखा, दो ही चीजें हैं, और अगर संसार ने हमें पकड़ के रखा होता तो फिर तो कोई के छूटने का सवाल नहीं, लेकिन कई लोग कहते कि छूट के चले गए, तो संसार अगर एक कोई आदमी है और वो किसी को छूट देता और किसी को नहीं देता तो फिर प्रश्न उठता कि उस संसार में हमें छूट क्यों नहीं दी, क्या बात है, ये सारे प्रश्न हैं और इस सबके बावजूद एक ही जवाब हमारे आचार्यों ने दिया है कि जीवम जन्म जरा मैं मरणम दुखस्थ कारणम जानिज्ञ चिंतित्य न दु विषय सुविरज्ञ अहो सुबद्धो माया गंठी। जीव सब जानता है कि जन्म में दुख है, मरण में दुख है, जरा में दुख है, सब जानता है, खूब अच्छी तरह जानता है, खूब अच्छी तरह विचार भी करता है, लेकिन इसके बाद भी विषयों से विरक्त नहीं होता, क्या कारण है, अहो आश्चर्य है, भगवान कहते बहुत आश्चर्य लगता मुझे कि अहो जरूर इसका पर ये क्यों है, अहो सुबद्धो माया ग्रंथी, ये वासना की ग्रंथि बहुत बहुत तीव्र है जो कि हमें संसार में भटकाती चली आ रही, ये मूर्छा बहुत गहरी है, बहुत पुराना नशा है, इसके बावजूद भी आदमी नशा कर रहा है, लेकिन जिंदगी का नशा बहुत पुराना पुराना है और हमारी वस्तुओं के प्रति इंडल्जिंग वस्तुओं के प्रति मूर्छा बहुत पुरानी पुरानी है, और जानते हैं हम विचार भी करते हैं बहुत बहुत, कई की बार हमने विचार किया, कई की बार हमने हमारे सामने हमने देखा कि अगर हमें कभी आग में हाथ डाला तो आग से हाथ जल गया, और हाथ में आग डालने से हमें मालूम पड़ गया कि हाथ जल जाता है, इसके बावजूद भी जब जब हमारे सामने आग आई है हम हाथ डालने से चूके नहीं, ये जानते हुए भी सब कुछ करते हुए मैं हाथ में अंगारे लिए किसी से पूछता रहा कि कोई मुझे अंगारों की तासीर तो बताओ, मैं हाथ में अंगारे लिए किसी से पूछता रहा कि कोई मुझे अंगारों की तासीर बता दे, कैसे होते अंगारे, ठंडे होते कि गर्म, बताओ तो महाराज, जो संसार में हम रहते हैं तो है संसार, ये हमसे पूछते आप, हम भी पूछ रहे हैं सबसे, हम भी आज चेतन हो गए हैं, शायद जाग गए हैं थोड़े बहुत, किसी का स्पर्श पा करके जाग गए हैं, बाकी दो पल तक हम भी वही थे, हम सब की वही बात है कि हम सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्या बात है, तो एक ही बात है कि अहो सुबद्धो माया गच्छति, बहुत बहुत पुराना नशा है, बहुत गहरी हमारे अंदर वासना है, और जब भी हमने वही जो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी उसी को करने की कोशिश की। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, मैंने आपसे शायद पहले भी किया था, कि जब निषेध की तरफ हमारा ज्यादा दृष्टि जाती जिसका निषेध किया है, एक वो तो चीज है ही और दूसरी चीज एक और है जो चीज हमसे छूटती है उसको हम पकड़ने की और जल्दी कोशिश करते हैं, और जब जब हमसे हमारा शरीर छूटने लगा हमने बहुत कोशिश की कि हम पकड़ लें, जब जब 2 रुपए छूटे तब तब हमने पकड़ने की कोशिश की कि ये 2 रुपए न छूट जाए, जो हमसे छूटना चाह उसको हमने पकड़ लिया, ये सारी पकड़ हमारी थी, संसार ने हमें पकड़ के नहीं रखा है, और जो जिनकी पकड़ ये ढीली हो गई, जिनकी ये मूर्छा ढीली हो गई, उनके बाबत आज चर्चा कर रहे हैं। आज पकड़ छोड़ने की बात है, आज कुछ छूट जाने की बात है, सीधी सीधी सी बात, मैं उतनी देर से आपको ला रहा हूं, आप घबराइएगा मत, वहीं आएंगे, हम जाएंगे जिस दिन के लिए बैठूंगे और जान भर में तो जहां तहां से होकर के आना तो वही पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा तो कुछ कह भी नहीं सकते, नीरज जी तो कुछ और दूसरा भी कह दे तो उनको कोई शाम को नीरज जी का नहीं कह सकते, वही कहेंगे जो उनको कहें। निर्देय तियम भावई, निर्देय तियम भावई मोह चैदून सब गव्वे सु, जो तस्त हवे चागो ए दे जिन वरे भणि, जो 3 तरह से विरक्त हो गया संसार शरीर भोग से, जो विरक्त है और जिसने सारी वस्तुओं के प्रति मोह का त्याग कर दिया है, वो उत्तम त्याग धर्म को ग्रहण करने वाला है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। संसार शरीर और भोग कब छूटता है, संसार शरीर और भोग जब मालूम पड़ने लगे कि संसार में कुछ नहीं है, जब मालूम पड़ने लगे कि भोग में कुछ नहीं है, अब ये समझ कहां से आएगा, ये कौन बताएगा कि कुछ नहीं है, हमें तो लग रहा सब कुछ है, हमने तो कई कई बार करके भोग, हमें लगता बहुत कुछ है, शुद्ध परिचान भूदा सब वस्तु भी काम भोग बंद कहा, एक तत्व विलंब हो नव जन सुलभ हो विधक नहीं है, तो सुलभ जो सुलभ ही उसको प्राप्त करना नहीं, जो सुलभ है उसको हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम भोग बंद की कथा तो बहुत सुलभ, लेकिन जो अपने एकत्व विमुक्त की कथा है वो आज तक बहुत दुर्लभ रही, कैसे प्राप्त की, तो हमने प्राप्त करने की कोशिश की, संसार में प्राप्त करने की, जहां नहीं है वहां प्राप्त करने की कोशिश की, हमने सोचा कि एक लड़के में सुख नहीं मिला, दूसरा पैदा करो दूसरा सुख देगा, ये वाला तो गया काम ये सुख नहीं मिलता, दूसरा कर लो, ये वाले घर में अच्छा नहीं लगता दूसरा घर बना लेंगे दूसरे में सुख मिलेगा, इस वाले सिटी में अच्छा नहीं लगता दूसरी सिटी में, और हमने एक एक करके बदलना शुरू किया, बदलते चले गए, लेकिन अगर कहीं होता तो मिलता, देख लो यहां पर, जब ये बात हमारे दिमाग में आ जाए जिस दिन कि यहां पर सुख नहीं है, यहां पर बिल्कुल भी सुख नहीं है, यहां तो दरख्त के छांव में धूप लगती है, यहां तो दरख्त के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चले उम्र भर के लिए, जिस दिन ये बात ध्यान में आ जाए कि यहां तो पेड़ के नीचे खड़े हो तब भी धूप लगती है, यहां तो इंद्रिय सुख भोग हो तब भी बाद में दुख ही मिलता है और कुछ हाथ नहीं आता। एक राजा था उसका एक ही घर, एक राजा था उसका एक ही घर, वो बड़ी कीमत होती है एक लड़का हो, अगर तो 2-4 हो तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता, एक लड़का था और राजा के बाद उसी को गद्दी बैठना, एक बार बीमार हो गया तो राजा रानी दोनों सिरहाने बैठे सुबह से शाम, शाम से सुबह, 2, 4, 10, 15 दिन हो गए बड़े परेशान, ना वो लड़का ठीक होता, हकीम डॉक्टर वैद्य जो थे वो सब आए लेकिन लड़का ठीक होने को नहीं था, राजा रानी दोनों सिरहाने बैठे रहे, न खाया न पिया, थोड़ा बहुत वहीं बैठे बैठे खा लिया, थोड़ा झपकी लगी कुछ खा लिया, एक दिन अचानक जो है वो राजा की झपकी लगी और राजा ने सपना देखना शुरू किया, और राजा ने सपने में देखा कि बहुत बड़ा महल मेरा है और उसमें 12 बेटे हैं और सब एक से एक मेधावी हैं, और देख रहा हूं मैं कि जो हमारे महल में आने जाने का रास्ता है उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। फिर महल की तो बात ही क्या है, रास्ते पर हीरे जवाहरात जड़े हुए, बड़ा सुंदर महल, बड़े अच्छे लड़के हैं। और अचानक क्या हुआ कि यहां पर वो जो लड़का बीमार था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। राजा रानी एकदम चीखी और राजा का सपना टूट गया। रानी राजा ने एक बार बाहर देखा, सपना टूटने के बाद देखा, लड़के की तरफ देखा, थोड़ी देर देखता रहा और उसके बाद बहुत जोर से हंसा। रानी ने कहा हो गया आदमी पागल हो गया, राजा पागल हो गया, दुख में लगता है पागल हो गया। लड़के हंसता रहा, राजा बहुत देर तक हंसता रहा। रानी ने धीरे से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको हो क्या है? देखिए ना लड़का मर गया, अब हंस रहे हैं उनका। बोले मैं ये सोच रहा हूं कि उनके लिए रोऊं कि इनके लिए रोऊं। नदी कौन कहना, अभी अभी मेरे 12 लड़के थे और अभी अभी एक बहुत बड़ा महल था मेरा और तुमने नींद खुलवा दी, हमारी सब चला गया, वो लुट गया हमारा सारा का सारा। अब उसे 12 के लड़कों के लिए रो कि इस एक लड़के के लिए, वो आंख बंद का सपना था, एक खुली आंख का सपना है, फर्क ज्यादा है सपने दो। अब कोई वजह नहीं है, सब व्यर्थ है, मैंने समझ लिया वो आंख बंद का सपना था, उसमें भी 12 मेरे थे, मैं मान के चल रहा था कि मेरे 12 लड़के हैं और तुमने एक मिनट में जरा सा चिल्ला करके मेरा सपना तोड़ दिया। मुझे समझ में आ गई बात कि यहां पर संसार में एक हो चाहे 12 हो चाहे 50 हो, यहां संसार में अगर हम जहां जो चीज नहीं है वहां वो खोजने की कोशिश करोगे तो वहां वो मिलने वाली नहीं। और यही बात है, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो और त्याग की कोई बड़ी भारी बात नहीं है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। पूरी तरह से छोड़ करके खाली बैठ जाता है तो साधु हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके छोड़ता है, दान देकर के छोड़ता है। चार तरह के दान की चर्चा शायद आपके शाम को करेंगे, मुझे तो चार तरह के दान की चर्चा करनी है विशेष रूप से। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें मूर्छा तोड़नी है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं और हम देख रहे हैं कि हमने एक एक चीज को कई की बार भोग के देखा है, कई की जिंदगियां हमारी बीत गई उसको भोगने में, लेकिन कहीं भी हमें सुख नहीं देता। मूर्छा टूटनी चाहिए। अब कैसे मूर्छा टूटे? मूर्छा तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, मगर हमने कभी ध्यान नहीं दिया उन साधनों की तरफ कि कौन कौन से साधन हमें मिले। बहुत सारे साधन, हमारा साधु निर्ग्रंथ जिसकी कोई गंती नहीं, न बाहर न भीतर, हमारा देव निर्ग्रंथ, हमारा शास्त्र निर्ग्रंथ, तीन तीन चीजें हमारे पास बिल्कुल निर्ग्रंथ, निरा, बाहर भीतर सपाट, और वही तो हमारा धर्म। त्याग धर्म का मतलब क्या है? निर्ग्रंथ हो जाना, बाहर की गांठ खोल देना धोती की और भीतर की कषाय की गांठ खोल देना, दोनों गांठें खोल दी है। निर्ग्रंथ होने के लिए दोनों जरूरी है। अकेले कोई कहे कि मेरी भीतर की गांठ छूट गई और बाहर की लगी रही, हो नहीं सकता। जिसके बाहर की छूट गई और भीतर की लगी रहे हो सकता मे बी पॉसिबल, लेकिन बाहर की गांठ इसलिए छोड़ी गई है कि भीतर की खुल जाए। इसलिए पहले जरूरी है कि बाहर की पहले खोल ली जाए, जितनी तुम्हारी सुविधा है, जितना तुम कर सकते हो, जितना शक्यानुष्ठान है, जितना पॉसिबल तुम पहले कर सकते हो कि हाँ बाहर की गांठ तो तुम अपने अपेक्षा से खोल सकते, लेकिन भीतर की गांठ खोलना जरा कषायों का काम है, ये तो कर्म का उदय है और बहुत मुश्किल जाती खोलने में, तो धीरे धीरे खोलना। लेकिन ऐसे धोखे में मत रहना कि मैं जब बाहर भीतर की खुलेगी तो अपने आप बाहर की खुल करके कौन आएगा खोलने के लिए, एकदम खुल करके नहीं चली रहेगी। तुमने लगाई अपने हाथ से तो खोल, अपने आप लग गई हो तो ठीक है, तुम मेरे से उठो और अपने आप लग जाए तो हम मान लेंगे कि हाँ कोई अपने आप लग गई, अपने आप छूट जाएगा। नहीं, अपने हाथ से लगाई है इसका मतलब अपने हाथ से छोड़ना पड़ेगा। भीतर की भी तुमने अपने हाथ से लगाई है, भीतर की भी अपने हाथ से छोड़ना पड़ेगी। और जिनने भीतर और बाहर की गांठ छोड़ दी है आज हमें उनकी बात कर लेंगे। बहुत दिन से ये बात मैं कहते हुए चला आ रहा था कि कभी मंदिर और मूर्ति के बाबत बात करें, आज मौका है मंदिर और मूर्ति के बाबत बात करें। मंदिर की महिमा, मंदिर की गरिमा, मूर्ति की गरिमा और मंदिर की गरिमा, इन सब के बाबत बहुत गौर से एक एक चीज समझ लेना। आज आप मेरे साथ मंदिर चलना, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं जरा सा भी चूक मत जाना, जितनी देर तक आप सुने उसमें कहीं चूक मत जाना, वरना फिर बीच में अगर कोई स्पॉट ब्रेक हो गया मंदिर का तो फिर मैं दूसरी बार नहीं बता पाऊंगा। आज समझ लेना, एक बार मंदिर जाना, मेरे साथ चलना मंदिर, अगर कहीं मैं चूक जाऊं तो मुझे भी बता देना कि ऐसे नहीं ऐसे जाना मंदिर, और आप चूक जाए तो मैं बताते हुए चलूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे जाना। चलिए आपके घर पहुंच जाते हैं, हालांकि मेरा घर नहीं आपका घर है, आप अपने अपने घर तक पहुंच जाइए। अपने घर से अगर हमें चलना है मंदिर की तरफ आना, और मंदिर की कल्पना कैसे की गई, बड़ा अजीब है ये, मंदिर का अनूठा विज्ञान है बिल्कुल।
हमारे ध्यान में आज तक नहीं आया। होता क्या है कि जैसे एक माचिस हमें कहीं एक लड़के को पड़ी मिल जाए और जलाते नहीं बनती हो तो वो ऊपर से खाका वाका देखेगा और एक तरफ फेंक देगा, यूज हमारे काम के लिए, क्योंकि जानते नहीं कि कैसे जलाई जाती है। ऐसे ही हमारे हाथ में मंदिर है लेकिन हम जानते नहीं कि क्या उपयोग, तो मंदिर का होना ना होना बिल्कुल बराबर। तो हमें यह जान लेना है आज कि मंदिर का उपयोग क्या है, मूर्ति का उपयोग क्या है। किन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने अगर ये चीज हमारे हाथ में दी है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनके मन में कोई ना कोई चीज होगी, जैसे कि अगर आपके घर में एक आपने गेस्ट रूम बना करके रखा हो, अतिथि गृह बना करके रखा हो और बहुत दिन तक अतिथि नहीं आए और तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाए, पूछे कि पिताजी ये कमरा काहे के लिए बना, अरे भैया हमारे पहले जो है बहुत रिश्तेदार अपने आते थे और अतिथि लोग आते थे, इनको रुकाने के लिए ये कमरा है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने यहां पर परमात्मा को रुकाने के लिए ये कमरा बना दिया था, लेकिन हम भूल गए कि यहां परमात्मा है कि नहीं। सीधी सीधी सी बात थी लेकिन हमने उसको भुला दिया। आज हम फिर से समझ रहे हैं कि यहां पर परमात्मा मिलता है। दुनिया से मिलने मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस समय चाहो शाम को निकलो टहलने, दुनिया के लोगों से मिलने के लिए जिस रास्ते निकल जाओ कम मिल जाएगी दुनिया की हर चीज, लेकिन मंदिर मिलना बहुत कठिन है। और मंदिर में फिर परमात्मा को खोज लेना और बहुत कठिन है। अपना मंदिर और अपना परमात्मा, भीतर भी और बाहर दोनों जरूरी है। भीतर का परमात्मा और भीतर का मंदिर, बाहर का मंदिर बाहर का परमात्मा के बिना भीतर का मंदिर और भीतर का परमात्मा नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिएगा आपके साथ चलता हूं मंदिर। आप मंदिर चलना शुरू कर रहे हैं, एक आदमी घर से कहीं बाहर निकलता है तो सबसे पहले आईने के सामने जाता है, बोले जरा देख दाग रहे ठीक ठाक है कि नहीं है और कपड़े वपड़े ठीक है कि नहीं। अब बाहर निकल रहे घर के कोई जो है कि क्यों आएंगे, फलाने आए और ऐसे घूम रहे, तो जरा ठीक ठाक होकर के हम निकलते हैं घर से बाहर। कोई भी निकलते हैं, कोई भी आदमी देख लेना, एक टेंडेंसी है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है आदमी के ऊपर कि वो सबसे पहले सोचता है कि जरा ठीक ठाक है कि नहीं है, कपड़े वपड़े ठीक है कि नहीं। किसी विशेष जगह जा रहे हो तो और जरा ठीक ठाक करते हैं, दो चार पैसे पॉकेट में रख लेते हैं, तो परमात्मा से मिलने जा रहा है जरा इसी तरह सोच लेना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, सबसे पहले अपनी योग्यता टटोल लेना कि परमात्मा के यहां जाने लायक हो कि नहीं। जा तो रहे बड़े ध्यान से, तैयार तो रहे परमात्मा, सब कपड़े वपड़े साफ सुथरे पहन रहते नहीं कि उठाया और घूंगी घूंगी चल दिए, ऐसे परमात्मा से मिलना नहीं हो सकता। हो सकता मूर्ति से मिलना हो सकता है, हो सकता एक पत्थर के सामने आना हो सकता है, लेकिन परमात्मा के सामने आना बहुत मुश्किल। जब तक तुमने नहाया धोया नहीं और दो चार दाने चावल के लिए लेना, आप कहोगे चावल नहीं कि क्यों, अरे विदेश जा रहे तो विदेशी मुद्रा लेना पड़ेगी, सीधी सीधी सी बात। और यहां के नोट कोई चलेंगे, परमात्मा के यहां के नोट चलेंगे कि 400 चावल के पुंज ले लो, क्योंकि उनसे मिलने जा रहे। जैसे 4 पैसे पॉकेट में रख के बाजार निकलते हो, ऐसे ही 2-4 दाने हाथ में लेके निकलते। अब आप कहेंगे चावल ही क्यों लिया, चलिए चावल के बारे में समझ लें। और रस्ते में अपन अभी शुरू नहीं किया है, देखिएगा बिल्कुल अपने घर में खड़े हुए ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ, नहीं तो आप रोड पे आ गए, अभी रोड पे नहीं आए, अभी तो सिर्फ चावल लेने की बात बता रहे कि चावल आपके हाथ में है और चावल क्यों लेकर के चल रहे हैं, क्यों नहीं चावल ले लिए, क्यों नहीं और दूसरी चीज ले ली। तो जरा ध्यान रखना कि चावल के ऊपर एक धान होती, चावल ओरिजिनल नहीं है, उगता नहीं चावल, उगती है धान, और धान के ऊपर एक छिलका होता है, एक कवर होता, सबसे पहले हमें वो हटाना। इसी तरह परमात्मा से मिलने जा रहे हो तो हमारे लिए पहले अपना हे भगवान घातीय कर्मों का एक लेयर है हमारे ऊपर। वो लाल रंग की लेयर होती है वो अघातीय कर्म होती है, दो लेयर होती है, धान हट जाने के बाद एक लेयर और है वो अघातीय कर्म होती है। इस तरह से हमें चावल प्राप्त हुआ है, घातीय कर्म हटा दिए और अघातीय कर्म हटा दिए, तब हमारे लिए अपना परमात्मा प्राप्त होगा। ऐसे ही इसलिए चावल इस बात के प्रतीक है और चावल के 400 लेकर के भगवान के सामने यही कहना चाहिए, भगवान कामना करता हूं कि जैसे धान से ये चावल प्राप्त हुआ है, ऐसे मुझे अपने शरीर से अतिक्रांत होकर के अपने परमात्मा का मुझे दर्शन कर हो, इस तरह की भावना लेकर के मैं ये 4 मिनट चढ़ा रहा हूं और कोई बात नहीं। और ध्यान रखना कि चावल बोओगे तो चावल उगेगा नहीं, धान बोओगे तो धान उगेगी। हे भगवान आपके सामने ये चावल चढ़ा करके कहता हूं कि अब मुझे बार बार जन्म ना मरण ना पड़े, बार बार उगना ना पड़े, ये चावल नहीं उगता ऐसे मैं भी नहीं उगू भगवान, इसलिए मैं चावल चढ़ा रहा हूं और कोई बात नहीं। और चावल अखंड चढ़ाना, ये जैसा अखंड चावल है वैसे मुझे अखंड पद की प्राप्ति हो, इसलिए अखंड चावल एक एक बीन करके अत्र ठा ठा अत्र संयत भाव हो, टुकड़ा चलाओगे टूटे रहोगे, ध्यान रखना टूटा चावल यानी तुम भी टूटे हो, इस बात की खबर दे रहा मैं तो सीधा कहता हूं, तुम्हारा प्रमाण है एक चावल नहीं बीन सके, चावल 4 चढ़ाओ चढ़ाओ, मैं कहां कहता मुट्ठी भर चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ, लेकिन बीन करके चढ़ाना बहुत प्रमाद के साथ, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा बीनने में, तो सेंगे सेंगे कौन से हैं, एक तरफ रखो टूटे टूटे कौन से हैं, इसमें देना कौन उठाओ। पहले हम लोगों को सिखाया जाता था कि भैया ऐसे धोइयो चावल के टूटे नहीं, पानी डाल करके इतने इतने तरीके से धोना कि टूटे नहीं चावल, लेकिन अब तो शुद्धि का चावल भी आधा तो टूट ही जाता है, हम वही चढ़ाते चले जा रहे हैं, क्या मिलेगा हमें, टूटा टूटा चलाएंगे, टूटा टूटा जीवन रहेगा, टूटा टूटा बाद में। ध्यान रखना अखंड लेकर के चलना, चलिए आपने कुंज ले लिए, चलिए मेरे साथ बाहर आइए, अब किसी से मिलने जा रहे हो तो रास्ते में चार और लोगों से गपशप करने अगर खड़े हो जाओगे तो उससे मिलना नहीं हो सके, तो जरा ध्यान रखना कि जब परमात्मा से मिलने जा रहे हो तो और किसी से मिलने की कोशिश मत करना, रास्ते में किसी से कोई बात करने की, किसी सिर्फ परमात्मा का ध्यान रखना, परमात्मा के गीत गाते हुए, परमात्मा को गुनगुनाते हुए, उन्हीं के स्वरूप में लीन होते हुए मंदिर की तरफ चले जाना। और सुनो, जूते चप्पल मत पहनना चमड़े, चमड़े में एक एसिड होता है जो तामसिक होता है, और सबसे नरम हमारा पोर्शन है, बहुत संवेदनशील, उससे वो हमारे टिश्यूज में प्रवेश करता है, हमारे अंदर तामसता क्रोध उत्तेजना एक्साइटमेंट सारी चीजें होती हैं। और आप ये ध्यान रखना कि चमड़ा क्या है, किसी की लाश है, और अगर बेटा अपने पिताजी को जला करके लाश आता है तो नहाता है, और तुम एक चमड़ा का बेल्ट एक लाश अपने शरीर में बांध करके जूते में पहन जूते पहन करके पैर में, और परमात्मा के यहां जा रहे हो, परमात्मा नहीं मिलेगा मूर्ति में। इसलिए चमड़े का बेल्ट, चमड़े के चप्पल, चमड़े के जूते, जो कुछ भी हो सब पहले घर में उतार लो भैया, पहले उतार लो, नहा दे करके फिर आगे आओ। अब आ गए हम मंदिर के दरवाजे पर, मैं पुराने मंदिरों की बात कर रहा हूं जहां सबसे पहले होता है एक फर्स्ट स्टेज होती मंदिर की, वहां पर पानी रखा हुआ है, ये पहला घेरा है मंदिर का, दूसरे घेरे में फिर प्रवेश होता है, वहां परिक्रमा होती, तीसरे में गर्भगृह होता, दक्षिण में ऐसे मंदिर विशेष रूप से बनाए जाते हैं वास्तुकला के लिए, तो यही मंदिर तीन पार्ट होते मंदिर के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड में रहता परमात्मा, वहां पर गर्भगृह। तो हम पहले वाले में आ गए हैं, अब जरा यहां पर भी आकर के जो गंदगी रस्ते की छप गई है वो सब धो लेना बहुत जरूरी है। एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में प्रवेश करना हो तो बाहर लिखा लेता है कि ओनली साइंटिस्ट, नो एडमिशन विदाउट साइंटिस्ट, और यहां पर जो चाहे जैसे चाहे चले जाए, ये प्रयोगशाला है भाई, ये तो परमात्मा की प्रयोगशाला है, ये तो अपने को अपने परमात्मा ढूंढने की प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हो, तो जरा ये प्रिकॉशंस ले लेना, पहले सावधानियां ले लेना कि कैसे शुद्ध होकर के मंदिर में प्रवेश करना, शायद आज तक आपने इतनी शुद्धि से मंदिर में शायद ही प्रवेश किया हो। एक थिएटर होता है आपके ऑपरेशन थिएटर, वहां पर कितनी शुद्धि के साथ प्रवेश करते हैं, वहां पर भी तो बहुत मुश्किल होती है भीतर जाने, हर एक को नहीं दिया जाता, ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये परमात्मा का मंदिर है, एक प्रयोगशाला समझ करके इसके अंदर प्रिकॉशंस लेकर के प्रवेश करना। चलिएगा, पहले गेट पर पैर वगैरह भी धो लिए हैं, अब जरा आगे बढ़े तो निस्सही निस्सही निस्सही, सेकेंड वाले पोर्शन में प्रवेश करने से पहले गेट पर कहना निस्सही। प्रवेश करता हूं, प्रवेश करता हूं, कोई हो मेरी वजह से उसको तकलीफ हो तो क्षमा मांग लेता हूं, मैं क्षमा मांग लेता हूं, क्षमा करना भाई, अगर मुझे नहीं दिख रहा है कोई ऐसा देवी देव भी वहां पर दर्शन के लिए भगवान क्या है, तो जरा एक तरफ हो जाना, एक तरफ हो जाना, एक तरफ हो जाना, प्रवेश की सूचना है ये, निस्सही निस्सही निस्सही, मैं प्रवेश कर रहा हूं, किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो तो वो क्षमा करे। और जैसे ही आप प्रवेश करने के लिए होंगे आपके सिर पर एक घंटा लटकता हुआ दिखेगा, क्या जरूरत घंटे की, और बजाना भी है घंटा, क्या जरूरत है घंटे की, बहुत जरूरत है घंटे की, यहीं से तो शुरू होती मंदिर की पूरी की परिवास्तुकला, और ध्वनि का संबंध यहां से शुरू होता, और ध्वनि की बहुत कीमत है, जब हम घंटा बजाते हैं तो एक ऐसा नाद उसके अंदर से बड़े धीमे धीमे वेव निकलना शुरू होती है, और आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर पत्थर फेंका जाए तो उसमें से ढेर सारी वेव निकलती हैं, और वो वेव क्या करती, लहरें क्या करती हैं, धीरे धीरे कचरे को दूर दूर हटाती चली जाती, वापस लौटाती, फिर कचरे को दूर हटाती, फिर वापस लौटाती, इससे जो ग्रुप्स बनेंगे, इससे जो ध्वनि की तरंगें निकलेंगी वे अपने चारों तरफ के आपके चारों तरफ के गंदगी को प्यूरिफाई करेंगी, इसलिए हमने धीरे से घंटे का नाद किया है, और सारा का सारा मंत्र शास्त्र इस नाद पर इस ध्वनि पर विद्यमान है, जो भी हम आगे जाके मंत्र का उच्चारण करेंगे वो सब इस नाद पर इस ध्वनि पर विद्यमान है। और ध्वनि के प्रयोग आज इतने अधिक होने लगे हैं कि अगर एक विशेष तरह की ध्वनि की जाए जो कि घंटे से निकलती है, विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि के द्वारा कितना प्यूरिफिकेशन होता है, कितनी मन को शांति मिलती है, आप धीरे से घंटे के आवाज करना और उसके नीचे खड़े हो जाना दो मिनट एक मिनट के लिए, फिर देखना कि क्या बरस रहा आपके ऊपर, घंटे के बजा करके दौड़ के भीतर नहीं निकलना, घंटा बजा करके बहुत धीरे से दूसरे को डिस्टर्ब ना, बहुत धीरे से, क्योंकि नीचे ही खड़े हो आप, घंटे के खड़े हो जाना वहां एक मिनट, देखना कि बहुत सारी चीजें आपके ऊपर ऐसा लगेगा बरस गई हैं और आप बाहर का कोलाहल समाप्त हो गया। घंटा इस बात का प्रतीक है कि हे भगवान अब आपके यहां प्रवेश करता हूं मैं, अब बाहर के कोलाहल को छोड़ करके आपके वातावरण में प्रवेश करता हूं। ये नाद इस बात का सूचक है कि परमात्मा के मंदिर में आ गए, बाहर का कोलाहल सब समाप्त हो जाए मेरे मन से, अब मैं भगवान के यहां प्रवेश करता हूं। अब हम भगवान के यहां प्रवेश कर रहे हैं ऐसी शांत भावना के साथ और सद्भावना के साथ प्रवेश करना। सद्भावना का बड़ा महत्व है, जैसे कि एक प्रयोग किया गया कि एक आदमी के हाथ में गिलास पकड़ा दिया पानी से भरा हुआ और उससे कहा गया कि भाई मंगल की भावना से भर जाना, बहुत अच्छी भावना करना, दूसरे का कल्याण हो ऐसी भावना से इस गिलास को पकड़ना। उसने कहा मंजूर है। 5-10 मिनट तक वो गिलास पकड़ा रहा और उस गिलास का पानी रोज एक पेड़ में डाला जाता था। धीरे धीरे वो पेड़ बहुत ज्यादा ग्रोथ उस पेड़ की हुई, बहुत ज्यादा तेजी के साथ वो बढ़ा, क्योंकि उस पर पानी छिड़का गया था मंगल की भावना से भरे हुए एक आसन से। क्योंकि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड की वजह से ही हम पाप और पुण्य करते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तब हम पाप करने लगते हैं, जब वो हमारा पूरा का पूरा एक स्फीयर में होता है, एक वृत्ताकार होता, तो हमारे जीवन में पुण्य उतरता है, पुण्य की वर्गनाएं आती हैं। इसी को आश्रय और बंध कहते हैं, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। तब हम इस तरह से, और दूसरा प्रयोग और किया गया कि एक आदमी बहुत अधिक तीव्रता से दूसरे को मारने की भावना से क्रूरता से भरा था, उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ाया गया और उसका पानी दूसरे पौधे में डाला गया। 8 दिन के अंदर वो पौधा सूख गया। भावना का बड़ा फर्क, एक पौधे के ऊपर। ऐसे ही आप भी अपनी सुंदर अच्छी भावनाएं मंगल की भावना करके भीतर जाना, वरना अंदर का वातावरण आपकी भावनाओं से गंदा होगा। भीतर का वातावरण गंदा मत करना। और आज मैं देखता हूं कि मंदिर नहीं रहा, अब तो बिल्डिंग हो गई, अब तो डिजाइनिंग हो गई, मंदिर की सारी वास्तुकला जाती रही, अब तो हमने सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, जो जितनी अच्छी डिजाइन बना सके उतनी अच्छी डिजाइन बना ले मंदिर की। डिजाइनिंग मंदिर नहीं है, मंदिर की वास्तुकला बहुत अद्भुत थी। छोटे छोटे खिड़की, छोटे छोटे दरवाजे, जितने कम दरवाजे हों, जितनी छोटी खिड़कियां, जितनी कम खिड़कियां हों, वो उतना ही अच्छा था। आप कहेंगे कि वाह बिल्कुल गुमसुम कर दो, देखो ऐसे कितना अच्छा लगा, खिड़की है, खूब दरवाजे, हवा आ रही, बढ़िया रोशनी, जूते लगा दो बिल्कुल हवा में, बहुत गर्मी लग रही। हमने इस तरह की, क्यों आखिर लोगों ने पहले के मंदिरों में छोटे छोटे दरवाजे बनाए, छोटी छोटी क्रियाएं क्यों बने? इसका सिर्फ एक ही था कि उन्होंने ध्वनि के ऊपर ध्यान रखा। जब हम ओंकार ध्वनि करेंगे तो उस ध्वनि के माध्यम से अंदर का वातावरण अपने आप प्यूरिफाइड होगा, अपने आप वातावरण शुद्ध होगा फिर। और जितने ज्यादा खिड़की दरवाजे होंगे, ध्वनि उतनी ही ज्यादा उन खिड़की दरवाजों से निकल जाएगी। हमारा अंदर का वातावरण ध्वनि की वजह से चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्वनि विद्युत में बदल जाती। ये सिद्धांत हमारे आचार्यों को बहुत पहले से मालूम था, विज्ञान को तो आज मालूम पड़ा कि ध्वनि को हम ट्रांसफर कर सकते हैं विद्युत में और विद्युत से ध्वनि बना सकते हैं। लेकिन उस समय हमारे आचार्यों को ज्ञात था कि शब्द ब्रह्म है, इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द को इस तरह से उपयोग करना कि वो तुम्हारे परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बन जाए। ये शब्द यहां पर सहायक बनता है। ओंकार की ध्वनि करेंगे आप, इस तरह से करिएगा कि वातावरण प्यूरिफाइड हो जाए और खिड़की दरवाजे छोटे बनाइए। एक और हेतु था दरवाजे छोटे बनाने कि अकड़ के मत घुसना, झुक करके घुसना। परमात्मा के यहां तीन लोग के नाथ के यहां घुस रहे हैं, ऐसे सिर उठा करके घुस रहे हैं, जरा झुक करके, अपने आप झुकना पड़ेगा, दरवाजा छोटा, झुक करके घुसना। इसलिए दरवाजे बहुत छोटे छोटे बनाए। और यहां पर तुम तफरी करने नहीं आए हो कि खिड़की से झांक करके बाहर देख सको, इसलिए खिड़की बहुत छोटी थी, झांक नहीं सकते, हवा आए उससे ज्यादा और नहीं आए कुछ भी, न झांक सकते बाहर, इसलिए खिड़की दरवाजे बहुत छोटे छोटे बनाए गए थे। तेरी मंजिल पर, तेरी मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान नहीं था, सरहदे अक्ल से गुजरे तब यहां पहुंचे। तेरी मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान नहीं था, सरहदे अक्ल से गुजरे हैं तब यहां पहुंचे हैं। सारी बुद्धिमानी जो हमने एक तरफ रख दी, श्रद्धा से भर करके झुक करके आए भगवान, तब आप तक पहुंचे। अकल का काम नहीं है वहां पहुंचना। कौन सी अकल लगा है अपनी, सब घरे लगाओ अकल, वो भीतर लगा हुई थी बात, यहां तो झुक करके सरहदे अकल से गुजरे तब यहां तक पहुंचे हैं। वैसे तो यहां पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल था, इसलिए श्रद्धा से भर करके और झुक करके परमात्मा के मंदिर में चलिएगा। हम भीतर घंटा बजा करके बहुत शांत होकर के सद्भावना से भर करके, आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं आप और मैं भी देख रहा हूं, सब लोग बिल्कुल शांति से भीतर घुस गए। दूसरे वाले गेट को हम पार कर गए, अब सीधा हमारे सामने परमात्मा, वो उसका गर्भगृह अलग है लेकिन उसमें से हमें दूसरे वाले सेकेंड उस पार्ट में हमें परमात्मा दिखाई पड़ने लगा। जैसे ही हमें भगवान दिखे और हम गदगद होकर के, वाणी गदगदयन बहु उपलक्ष्यन नेत्र द्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन केतु निर्वाह, हे भगवान मैं गदगद हो गया, मेरा होना सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, वाणी से गदगद होकर के कुछ का कुछ फूटने लगा, जो कुछ मन में आया निकलने लगा, आंसू की धारा बहने लगी है और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने परमात्मा और मैं जमीन में साथ शांत होकर के उनको नमस्कार कर, सबसे पहला नमस्कार है। फिर उसके बाद खड़े हो गए, खड़े हो गए, अब भगवान की एक नमस्कार हो गया, खड़े होकर के दूसरे बार फिर भगवान की स्तुति करना जो मन में आए, जिस तरह की हे शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व निर्मा पितस्य भुवनैः कदराम भूत तामंत एव फलुते पुनव प्रतिव्याम यत्ते समानम अपरम नई रूपम अस्ति। और दुनिया में ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कहीं नहीं देखा, परमात्मा आपके ही रूप सारा सारा सुंदर है। जरूर आपने दुनिया के जितने अच्छे अच्छे परमाणु सब अपने अंदर रख लिए हैं, दुनिया में कोई ऐसा परमाणु नहीं रहा अच्छा जिसके जो कि और दूसरे को मिले, जितने दुनिया में अच्छे अच्छे परमाणु थे उनसे निर्मित है आपकी ये देह की स्तुति है। सिद्धा अनुद्यूत कर्म उसके बाद ये लोकेश सहस्र लक्षण धरा गेयानवांतर गता ए सम्यक बहुजाल हे कुमथना चंद्रार्क ते ज्योतिका ए साध्वी सुरा सरो गुण सुधैर गीत प्रणुत्यार्पतान तान स्थान देवादि वीर चर्मान भक्त्या नमस्याम। हे भगवान अकेले देह की स्तुति करने नहीं आया मैं, तो तुम्हारे 1008 गुणों की स्तुति करने आया मैं, तो 18 दोषों से रहित परमात्मा के चरणों में झुकने के लिए आया, इसलिए आपका स्तवन करता हूं। ऐसे गदगद होकर के फिर सेकंड स्तुति करना, स्तुति समाप्त हो तो फिर जाकर के दूसरा नमस्कार करना, दूसरा नमस्कार। ये दो नमस्कार हो गए जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये दो नमस्कार, मैं अरंतों की शरण को प्राप्त करता हूं, मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूं, मैं साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूं, मैं केवलियों के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त करता हूं, केवली पंडितो धम्मम शरणम पौवच्चः। ये दो अहंकार तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है ममकार तोड़ने के लिए फिर खड़े हो जाना, अभी उधर हटना मत वहां से, तीसरी बार फिर खड़े हो जाना और दोनों हाथ नीचे करके 9 बार भगवान का नमो कार मंत्र का स्मरण करना कि मैं अपने काय से ममकार छोड़ता हूं। अहंकार और ममकार दो चीजों का त्याग ही आज त्याग धर्म के दिन करने का है और बाकी चीजों का त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। अहंकार का त्याग कर देना, ममकार का त्याग कर देना, ये इस बात का प्रतीक है कि दो नमस्कार ममकार के त्याग के लिए एक नमस्कार, ये दो नमस्कार अहंकार के त्याग के लिए एक नमस्कार, ममकार का त्याग करता हूं, काय का उत्सर्ग करता हूं। मेरे लिए काय की कोई कीमत नहीं है, अभी आपकी सिर्फ कीमत है, आपके ध्यान में लीन होता हूं। तब तीसरी बार इस तरह से काय उत्सर्ग करके नमस्कार करना, तीन लोग के नाथ के दरबार में है और एक बार नमस्कार करके मत जाना, तीन बार उठना और बैठना बहुत जरूरी है। तीन नमस्कार, तीन की संख्या का बहुत महत्व है। और फिर उसके बाद तीन प्रदक्षिणा देनी बाकी, तीन प्रदक्षिणा देनी बाकी है, क्यों देनी तीन बार तीन प्रदक्षिणा? अरे मन की मन जाने, शरीर की शरीर जानता है और वचन की वचन जानता है, तीनों अपनी अपनी जानते हैं। ये तीनों तीन परिक्रमा में एक हो जाए भगवान, मन से भी झुकता हूं, वचन से भी झुकता हूं, शरीर से भी झुकता हूं, एक भी खाली ना रह जाए, तीन बार तीन प्रदक्षिणा देता हूं। इसलिए ये तीन संख्या बहुत कीमती है। तीन निर्ग्रंथ है हमारे यहां पर, देव गुरु शास्त्र, ये तीनों निर्ग्रंथ है और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये मोक्ष का मार्ग भी तीन है। तीन की संख्या की क्या बात कहे, जब आदमी मर जाता है ना तब तीन दिन के बाद खारी उठती मालूम, क्यों उठती खारी? तीन दिन के बाद तो भी सोचा आपने, हमारे यहां कहा गया कि अग्नि की आयु 3 दिन की होती है, अगर ईंधन न डले नया और अग्नि जलती रहे तो अपने आप शांत होने में 3 दिन लगेंगे, इसलिए वहां पर जला करके आए हैं, 3 दिन में अपने आप शांत हो जाएगी, तब जाके खारी खाएंगे। और विज्ञान ने आज खोज की, उसने कहा कि जब आदमी यहां मर जाता है उस एरिया में जो हमारा इफेक्ट पड़ा है वो 3 दिन तक डायनेमिक फील्ड हमारा वहां का डिस्टर्ब होने में 3 दिन लगते हैं, उस जगह पर 3 दिन तक हम वहां पर विद्यमान हैं, हम चले गए वहां पर लेकिन इफेक्ट जो हमारा उस वातावरण पर पड़ा है वो 3 दिन तक कम से कम रहेगा। इसलिए तीन की संख्या का बहुत कीमती है, इसलिए यहां पर तीन प्रदक्षिणाएं भी रखी गई हैं, वो हमारे मन वचन काय की शुद्धि के लिए तीन प्रदक्षिणाएं। और अब आगे हमारे सामने बिल्कुल आप कहां चले गए, तीन प्रदक्षिणाएं दे रहे हैं ना, आप देते रहिएगा, देखिए तीसरी प्रदक्षिणा खत्म हो गई और तीसरी प्रदक्षिणा के बाद आप बिल्कुल भगवान के सामने आ गए। अब प्रवेश करना है गर्भगृह में उतरना, इतने बाकी रह गया है, गर्भगृह में उतरना बाकी रह गया। हम पूरी शुद्धि से आए थे इसलिए हम हमारी कैपेसिटी है, हम हमारे पास योग्यता है कि हम गर्भगृह में उतर सकते हैं। जरा देख लेना कि उतरने लायक तुम्हारे अंदर है योग्यता के लिए, नहीं तो मत उतरना गर्भगृह। गर्भगृह में उतरने की योग्यता के साथ आप उतरेंगे और देखेंगे अंदर छोटी सी एक कोई खिड़की है, उससे प्रकाश आ रहा है, इससे ज्यादा वहां प्रकाश नहीं, और ऊपर बहुत बड़ा गुंबद, हमने ओंकार बोला तो वापस हमारे ऊपर आया ओम,
जो कुछ हमने बोला वो हमारे ऊपर फिर से बरस गया, एक सर्किल पूरा हो गया। सर्किल पूरा होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हम बोले वो हमारे ऊपर फिर से वापस आ जाए। गुंबद ने हमारे ऊपर जो बोला वो हमारे ऊपर फिर से वापस आ गया। गुंबद इस बात का प्रतीक है कि यहां पर परमात्मा के दरबार में आकर के तुम जो भी बोलोगे जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए उसका फल वही मिलेगा और दूसरा नहीं मिल सकता। तुम यहां गाली दोगे तुम्हारे ऊपर गाली बरसेगी, तुम यहां ओंकार बोलोगे यहां तुम्हारे ऊपर भी ओंकार टपकेगा। गुंबद इस बात का प्रतीक था। और एक बात और थी गुंबद के साथ में कि गुंबद जैसे गोल गोल है, सिर्फ परिधि है उसकी, कोई केंद्र नहीं है गुंबद का। केंद्र को ध्यान में रखकर के गुंबद बनाए गए लेकिन वो गोल है गुंबद। इसी तरह हमारा मन भी बिल्कुल एकदम गोल गोल है, यहां से चलो वहीं पहुंच जाते, जहां से चलो वहीं पहुंच जाते। गुंबद तुम्हारे गोल मन का प्रतीक है, इसलिए बहुत संभल करके अपने मन को संभाल करके चलना। व्यर्थ की बातें मत सोचना अंदर जा करके, क्योंकि जो सोचोगे वो तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है। गुंबद इस बात का प्रतीक था। आप देख रहे हैं कि हम मंदिर में पूरी तरह से पहुंच गए हैं, बिल्कुल भगवान के रूबरू हम सामने हैं, भगवान हमारे सामने हैं और हम देख रहे हैं भगवान को। क्या जरूरत, क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर भगवान का? चलिए अब मूर्ति हमारे सामने है, क्या जरूरत है हमें मूर्ति की? मंदिर की वास्तुकला तो आपके समझ में आ गई, पूरे के पूरे ध्वनि के प्रयोग हैं। अब आइएगा मूर्ति की वास्तुकला के बाबत, मूर्ति के बाबत समझ लें जरा सा कि क्या जरूरत है हमें मूर्ति की और क्या उपयोगिता है हमारे साथ मूर्ति की। एक बार की बात है कि विवेकानंद पहुंचे राजा के यहां पर। राजा ने कहा, क्या विवेकानंद तुम भी मूर्ति मूर्ति को मानते हो और क्या जरूरत है इस सब मूर्ति को मानने की? विवेकानंद बड़े असमंजस में रह गए, कहां आ गए बोले। खैर कोई बात नहीं, राजा ने बहुत देर तक कहा, बोले अब देखो अब ऐसा मत करना, तुम मूर्ति मत मानना, ना उपदेश देना लोगों की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं मूर्ति मूर्ति की। उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े, उनके घर में जाकर के देखा, उनके महल में उनके पिताजी का और उनकी मां का जो खत्म हो गई थी उनके दो बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे, तैल चित्र लगे हुए थे जो उनके साथ लोग आए थे। विवेकानंद ने कहा दोनों चित्र उतारे जाए, नीचे रखे जाए। दोनों चित्र उतार करके नीचे रखवा दिए। बोले सब लोग चढ़ जाओ इसके ऊपर। राजा कहते क्या करते हो आप, ये तो मेरे पिताजी हैं। कहने लगा क्या बात, आपके पिताजी हैं इस चित्र में? मेरे भगवान है उस मूर्ति में, इसलिए मुझे मूर्ति की जरूरत है। जैसे तुम्हें अपने चित्रों को रौंदने में तकलीफ हो रही है, ऐसे मुझे अपने भगवान की मूर्ति की बहुत जरूरत है। तुम इन चित्रों में अपने पिताजी को पा रहे हो, इसलिए मैं अपने मूर्ति में भगवान को पा रहा हूं, मुझे मूर्ति बहुत जरूरी है राजन। ये जवाब विवेकानंद ने दिया था उस समय। क्या हम ये जवाब लोगों को नहीं दे सकते कि हमें मूर्ति की जरूरत है? आज हमने मूर्ति को नकारना भी शुरू किया है, तो क्या जरूरत है मूर्ति की? और रूस में एक प्रयोग हुआ, आपको बताऊं कि क्या होता मूर्ति का प्रभाव। एक माइकलोवा करके रूस में एक रशियन लेडी भी और बड़ी वैज्ञानिक थी, वो कहते हैं मैंने पढ़ा है जैसा, वो एक प्रयोग किया उन्होंने, एक धातु की एक पीस लिया, एक मेटल पीस लिया और उस पर अपना ध्यान, अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड उन्होंने कंसंट्रेट किया और कंसंट्रेट करके वो ध्यान करके और उसको अपने तरफ उन्होंने कोशिश करके और दूर बैठ करके 6 फीट दूर से उसको जब वो चाहती थी कि मेरे पास आए तो वो पीस अपने पास आने लगता था और जब वो चाहें कि वो पीस मुझसे दूर चला जाए तो वो दूर चला जाता था। इतनी ताकत उनके अंदर आ गई थी। और इसके बाद उन्होंने प्रयोग किया, इस प्रयोग के साथ एक और प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जब मेरे चारों तरफ अश्रद्धा से भरे हुए लोग बैठे हुए होते हैं तब मुझे उस पीस को खींचने में 2 घंटे से ज्यादा घंटे लग जाते हैं, मेरा 10 किलो वजन कम हो जाता है इस साधना में। लेकिन जब मेरे पास श्रद्धा से आधे भरे लोग हैं, आधे अश्रद्धालु लोग बैठे हैं, तब मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगता है और मेरा 5 पाउंड वजन कम होता है। जब सभी लोग श्रद्धा से भरे बैठे हैं कि माइकलोवा का प्रयोग सही होगा, बिल्कुल सत्य कह रही है ये, तब मैं उस मेटल पीस को बिना मेरा कोई वजन कम नहीं होता और मैं मेटल पीस को अपने पास खींच सकती हूं, दूर भेज सकती हूं। श्रद्धा की बहुत जरूरत है। और तब उन्होंने आगे का प्रयोग किया कि उस मेटल पीस पर कंसंट्रेट होकर के अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया और वो मेटल पीस एक कमरे में रखा गया और उसमें मेटल पीस में यह सुरक्षित था कि अपनी तरफ खींचता, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी तरफ खींच करके उसमें ऐसी ताकत पैदा करती थी कि जहां जो भी व्यक्ति उसके पास से निकलता उसको लगता है इस कमरे में जाएं, यहां पर बैठे। और एक प्रयोग और किया गया कि एक मेटल पीस के ऊपर प्रक्षेपित किया उन्होंने कि इसमें जो भी आता था उसको ऐसा लगता था उसके पास जाने की यहां से दूर चले जाए। हमारे मूर्ति में धातु की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बहुत बहुत दिन तक कहते हैं पुरानी मूर्तियों में साधु बैठ करके मूर्ति के सामने और ध्यान किया करते थे, उनकी प्राण ऊर्जा उसमें जाकर के समा जाती थी और मूर्ति जागृत हो जाती थी और जो उसके पास से गुजरता था अनायास उसको लगता था कि परमात्मा मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए।
इस तरह की मूर्ति हमारी बहुत उपयोगी थी। लोग मंदिर के सामने से निकले, एक उदाहरण आपको दूं कि एक चोर चोरी करने के लिए रात में, उसको नहीं मालूम कि यहां पर कौन सा मंदिर है, टूट गया था मंदिर, लेकिन मूर्ति वहां पर विद्यमान थी मंदिर के पास में। वो वहां से निकला और जिस जगह से निकला उसने कहा कि मुझे उस जगह जाकर के, एक ऐसी जगह थी जहां जाकर के मुझे लगा कि नहीं मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ चोरी, मेरा विचार बदलने लगा, मैं लौटने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा कि देखूं तो यहां पर है क्या। फिर उसने माचिस की सीढ़ी जलाई, देखा वहां पर एक मंदिर था। अगर हम संवेदना से भरे होंगे और मंदिर के सामने से भी निकलेंगे तो मंदिर का परमात्मा कहेगा कि अगर गलत करने जा रहे हो तो गलत मत करो, और फिर मंदिर में भीतर आकर के हम गलत करें तो हमारी कमजोरी है, मंदिर की कमजोरी नहीं। परमात्मा ने हमेशा हमें यही कहा कि गलत मत करना। अगर हम थोड़े से संवेदनशील हैं तो हमारे अंदर, अगर जैसे रेडियो होता ना, अगर यहां पर रेडियो रख दो तो अभी कितनी सारी यहां पर वेव्स हैं वो रेडियो पकड़ लेगा, और रेडियो नहीं हो अगर तो वेव्स भरी रहे क्या काम की है। इसी तरह हमारा पूरा का पूरा मंदिर एक चार्ज फील्ड है। अगर हमारे पास रिसेप्टिविटी, हमारे पास ग्राहकता है, हमारे पास रेडियो है, तो हम जिस समय खोलें उस समय परमात्मा का संगीत अंदर बजने में देर नहीं लगेगी। इस तरह का हमारा मंदिर है, यह बहुत कीमती है, बहुत अनूठा है ये मंदिर की कल्पना, और इसको आपने समझा। मूर्ति के बाबत भी मैंने एक बात आपसे और कह देनी है, मुझे पूजन और अभिषेक के बाबत भी मुझे शॉर्ट में बात कह देनी, फिर अपनी बात खत्म कर देता हूं। वो इतनी है कि पूजन क्यों की जाती है, क्यों की जाती पूजन भगवान की। हम जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, किस कामना से चढ़ाते हैं, ये सबको मालूम है कि मुझे जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निष्प्रांति। चंदन चढ़ाते हैं सुगंध की प्राप्ति हो, मुझे भव आताप निवारण आय चंदनम निष्प्रांति, अक्षयता प्राप्त है अक्षतम निष्प्रांति। इस तरह से हम एक एक करके और आठों धर्म चढ़ाते हैं भगवान के सामने। आखिर क्या है, कहां है वहां पर भगवान। पूजन में भगवान हमारे अंदर विराजमान किया है, हमने जो तीन बार उत्थाप किया है कि अत्र अत्र आइए आइए मेरे पास आइए, भगवान वहां मूर्ति में बैठे हुए हैं, आप कोई बात नहीं बैठे रहिएगा वहां पर परमात्मा सामने। लेकिन हमने यहां पर तीन चावल चढ़ा करके कहा कि हे भगवान मेरे अंदर आइए, वहां वो ठोना में नहीं आओ, तो ठोना में आवे कि नहीं गए हम, हमारे अंदर भीतर आना भगवान उसमें नहीं। लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि वो जो ठोने में चढ़ाया है, आगे में जला है, फलान कर रहा है, जो ने चढ़ाते हैं सुने करो चाहिए, झगड़े में मत पड़ना भी, ये झगड़े सब तुम्हारी भक्ति को कम करने वाले। मैं जैसा जैसा कह रहा हूं, अगर भक्ति तुम्हारे अंदर है तो सब माफ है भक्ति में। अविवेक नहीं करना, लेकिन विवेक पूर्वक चढ़ाना। वहां पर तीन चावल सिर्फ इस बात के प्रतीक हैं, जैसे मंदिर का गुम्बद प्रतीक है, ऐसे तीन चावल प्रतीक हैं कि ये मैंने अपने अंदर विराजमान कर लिए, मैं मेरे लिए ये सानिध्य आपका भाव भाव तक बना रहे। तो तीन बार हमने कर करके और अपने अंदर निराकार को बिठाया, साकार से निराकार की उपलब्धि के लिए पूजन की जा रही है, साकार से साकार की प्राप्ति के लिए नहीं की जा रही, मूर्ति से मूर्तिमान तक पहुंचने के लिए पूजन की जा रही है, और कोई पूजन की वजह नहीं है। और अभिषेक के बाबत एक शोध हुआ, अभी तमिलनाडु की छात्राओं ने शोध किया, हमारे यहां तो जैन लोग शोध करने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, वो कहते सब लिखा हुआ और व्यर्थ है सब ढकोसला। और जो तमिलनाडु के जो कि जैन नहीं है, उन महिलाओं ने, उन छात्राओं ने वहां पर शोध किया मूर्ति पर, उन्होंने अभिषेक करके तरह तरह के पदार्थों से अभिषेक करके देखा, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा कीमती चीज है अभिषेक करना। क्या होता है कि पानी की और हर एक पदार्थ की पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू होती, केमिस्ट्री वाले समझते, मुझे उसका फुल फॉर्म में भूल गया, हाइड्रोजन परसेंटेज या ऐसा ही कुछ है उसका। पानी की जीरो होती है, एसिड में बढ़ती चली जाती है, और एल्कली जो होते हैं क्षार होते हैं उनमें वह कम हो जाती माइनस वन माइनस टू, और यहां पर प्लस वन प्लस टू प्लस सेवन तक चलती पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू के बाबत अपन समझ में सीधा सीधा कि एक केमिस्ट्री है और जिसमें ये पीएच वैल्यू होती। अब देखिएगा आपकी, अगर आपने मूर्ति आपकी उसकी है, धातु की मूर्ति है, तो धातु की अपनी चालकता होती, कंडक्टिविटी होती। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने पानी की धारा उस पर छोड़नी शुरू की तो मूर्ति की चालकता बढ़नी शुरू होती, मूर्ति की चालकता बढ़ी तो आयनाइजेशन होना शुरू हो गया, जो भी पदार्थ हम डाल रहे थे उसमें आयनाइजेशन होना शुरू हुआ, आइंस बनना शुरू हो गए, विन आइन घनाइन बनना शुरू हो गए। ये केमिस्ट्री की प्रक्रिया है, जो लोग केमिस्ट्री समझते हैं वे, मैं अभी क्लियर हो जाएगा, जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर बाद में बात आएगी कि वो उपयोग क्या है। वो रिनाइन निकलते हैं और हमारे शरीर में जाकर के वो, और आपने देखा होगा कि अभिषेक करते समय एक जरा सा दुपट्टा ऐसा डाल लिया जाता है और छाती पूरी की पूरी खाली रहती, हाथ खाली रहते, सब बिल्कुल कुछ नहीं रहता, पूरा शरीर, बहुत थोड़े से वस्त्र हैं अभिषेक करते वक्त हमारे ऊपर, पूरे लबादा ओढ़ करके नहीं आया अभिषेक करने, ताकि वो रिनाइन हमारे शरीर से टकरा हो सके। रिनाइन क्या करते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में होती हीमोग्लोबिन प्रोसेस, हीमोग्लोबिन प्रोसेस कहलाती है, जब हम शरीर बाहर से वायु लेते हैं, वो अंदर जाकर के फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती, हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फेफड़े ऑक्सीजन को बाहर ले भीतर की तरफ देते हैं। ये हीमोग्लोबिन प्रोसेस रक्त में जो रक्ताणु होते हैं वे इस प्रोसेस को करते हैं, और जब रेनाइन हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो हीमोग्लोबिन प्रोसेस बहुत स्पीड में होना शुरू हो जाती और हमारे फेफड़े शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं रेनाइन फोकट में मिले आपके लिए परमात्मा की मूर्ति से, हमारे रेनाइन आ रहे हैं, अभिषेक करने से रेनाइन आ रहे हैं हमारे शरीर तक और हमारा स्वास्थ्य अनायास ठीक हो रहा है। पहले के लोग मुझे लगता है शायद इसीलिए बहुत बलशाली और बहुत स्वस्थ रहते थे, वे अभिषेक किया करते थे गदगद होकर के और ऐसे रो में खड़े हो जाते थे मैं तो सोचता हूं, और ऐसे दोनों तरफ से ढालते होंगे। आपने देखा हो कि आयनाइजेशन जो भी होगा सामने नहीं जाएगा, आयन ऐसे फैलते हैं, आपके यहां पर बनाई गई है ऐसे तिरछे में बनाई गई मूर्ति ऐसी रखी ऐसे फैलेंगे यहां से, तो सब लोग ऐसे खड़े हों, सामने से जाकर के भगवान के दर्शन करने का निषेध किया गया, एकदम सामने पहुंच गए आप नहीं। हमने देखा कई जगह जो है ऐसा एक बीच में बना करके रख देते हैं, वो उसमें एक पर्दा सा लगा देते भगवान के सामने, बाजू में से जाओ यहां से या यहां से जाओ फिर भगवान के दर्शन होंगे, एकदम सामने नहीं देखना। क्यों नहीं ये बात? क्योंकि तुम बाजू में से जाओगे वहीं से हवा धीरे से बाहर निकलेगी, आई सब बाहर ऐसे ऐसे निकलते सामने नहीं फैलते आई ऐसे धीरे से निकल जाते हैं, तो इसलिए उन तिरछे होकर के वहां पर खड़े होना पूजन प्रक्षाल करते समय, और लोग भी सामने नहीं खड़े होंगे क्योंकि सामने और भी लोग हैं देखने के लिए, वो डालते चले जाते हैं, आयनाइजेशन होता है और आयन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन प्रोसेस बढ़ाते चले जाते हैं। फोकट में एक चीज मिली थी लेकिन हमने छोड़ दी, और कभी अगर किसी ने अभिषेक किया हो, मुझे तो अभिषेक का थोड़ा सा ज्ञान है जितना मैं अपने जीवन में अभिषेक कर सका। जब मैंने पहली बार अभिषेक किया था फिर मेरा अभिषेक कोई नहीं छुड़ा पाया, फिर मेरा अभिषेक छुड़ाने के लिए हजार लोग भी आ जाते तो मैं अभिषेक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अभिषेक की कीमत मालूम पड़ गई थी। और अभिषेक की कीमत अगर आपको कभी मालूम पड़े तो आप देख लें, अगर आप थोड़े से संवेदनशील हैं तो आपको अभिषेक की कीमत मालूम पड़ेगी। वो कीमत सिर्फ इतनी सी है कि पहली बार अभिषेक करते समय डर लगेगा, भगवान के पास इतनी बड़ी मूर्ति के पास पहुंच जाएंगे बड़ा डर लगेगा, कब कभी छूटेगी कह रहे भैया कैसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भगवान की मूर्ति पहला डर बहुत जरूरी है, डर पत्थर है, लेकिन डर क्यों है पैदा हमारे अंदर, इसका मतलब जरूर हमारे अंदर परमात्मा है, जरूर हमारे अंदर परमात्मा है जो कि इससे गलती से डर रहा, हमारी आत्मा जीवित है अभी मरी नहीं है, हमारी आत्मा का डर पैदा हुआ। और दूसरी बात, जब मैंने अंगूठी लेकर के भगवान का प्रक्षाल करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं वहां पर सोचिएगा कि मैं तो था ही नहीं समझिएगा, मेरा हाथ अनायास भगवान के यहां पर बड़े धीरे से आया, यहां पर धीरे से पत्थर है लेकिन यहां पर धीरे से पहुंचा और यहां पर जोर से पहुंच दिया, आखिर क्या बात थी? भगवान को भगवान माना हमने प्रक्षाल करते समय ही भगवान को भगवान जैसा हम अनुभव कर पाते हैं कि बिल्कुल भगवान है भैया, जोर से लगने जाए भगवान की आंख में, तब तो हमारा हाथ धीमा हो गया, पत्थर की मूर्ति थी लेकिन हमारे मन में आया भगवान की आंख है भैया, भगवान की आंख में धीरे से पहुंचो। और इसी वजह से आप चौके में जाते हैं तो कई लोग पहुंच के भी नहीं जानते, मैं उनसे पहले नंबर कहता हूं कि भैया प्रक्षाल नहीं करते होंगे और कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, तुमने प्रक्षाल नहीं किया होगा कभी, इसलिए तुम पहुंचना भी नहीं जानते कि दूसरे के शरीर को कैसे पहुंचना। जो प्रक्षाल करना सीख लेता है वो परमात्मा को पाना सीख लेता है, बहुत जरूरी है एक बार परमात्मा की मूर्ति छू करके तो देखना, वो चीज तुम्हें संसार की कोई भी चीज छू करके देख लेना वो अनुभूति नहीं मिलेगी जो परमात्मा की मूर्ति एक बार छू करके तुम देखोगे पहली बार में अनुभूति। और अगर उस अनुभूति को जीवित रखना है तो रोज रोज छीना और रोज रोज प्रक्षाल करने की प्रक्रिया करना बड़ी साइंटिफिक है, अभिषेक भी बड़ा साइंटिफिक है। और कभी भी ऐसे किसी धोखे में मत पड़ना, अपनी बात खत्म करता हूं, मंदिर का मुझसे अर्थ मत पूछना कि मंदिर का क्या अर्थ है, मंदिर का कोई अर्थ नहीं होता, H2+O2=2H2O कोई अर्थ नहीं है सूत्र का, तुम पानी बना करके दिखाओ तो ठीक, तुम अगर H2+O2 का उपयोग करके और पानी बना करके दिखा दो तो तुम्हारा सूत्र ठीक है। इसी तरह से मंदिर का कोई अर्थ नहीं होता, मंदिर का उपयोग अगर तुम कर सकते हो तो मंदिर का उपयोग, जो मंदिर के उपयोग करने की कला सीख लेता है वो मंदिर उसके लिए मंदिर है, नहीं तो फिर बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं। और कई लोग कहते हैं अनाथालय बना लो, अस्पताल खोल लो, आदमी तो भूखो मार रहा हो तुम प्रतिष्ठा कर रहे, मंदिर में मंदिर बनाते चले जा रहे, आदमी आज यही कह रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर हटा करके कितने अनाथालय बना लो, कितने अस्पताल बना लो, कितने स्कूल खोल लो, लेकिन जब जब भी तुम्हें अपनी मुक्ति का द्वार खुलेगा तो परमात्मा के मंदिर से खुलेगा, किसी अस्पताल से नहीं खुल सकता, किसी और स्कूल से नहीं खुल सकता परमात्मा का द्वार। इसलिए परमात्मा के मंदिर हटाने की कोशिश मत करना। 14वीं या 16वीं शताब्दी में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब उनने सबसे पहले भारत की संस्कृति को खंडित करने के लिए वहां के मंदिर और मूर्ति मिटाना शुरू की ताकि आदमी की चेतना मर जाए आदमी पूरा भौतिक हो जाए, उसकी श्रद्धा टूट जाए, सबसे पहले मंदिर तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए अपने मंदिर की सुरक्षा बहुत करके रखना। कोई कहे कि मंदिर हटा के यहां पर एक स्कूल बना दो, एक कॉलेज खोल दो, तुम कहना मंदिर नहीं हटेगा, दूसरी जगह खोल दो, निषेध नहीं करते। मंदिर के साथ साथ तुम कॉलेज भी खोलो, मैं निषेध नहीं करता, लेकिन मंदिर हटा करके और मूर्ति मंदिर हटा करके अस्पताल और कॉलेज खोलने की चेष्टा मत करना, वरना अपनी चेतना हटा करके हम क्या लाएंगे, सिर्फ जड़ रह जाएंगे। मंदिर हमारी चेतना है, अगर हमें अपनी चेतना को पाना है तो मंदिर जाना होगा, मंदिर जाना होगा, मंदिर जाना होगा। जो मंदिर जाते हैं हमें मंदिर जाना सीख लें मुझे कहना है, और जो मंदिर नहीं जाते वे मंदिर जाना शुरू कर दें। इतने सुनने के बाद भी अगर आप मंदिर जाना नहीं सीखे और मंदिर नहीं गए तो मैं सोचता हूं कि शायद फिर देवशास्त्र और गुरु है नहीं, होते हुए भी नहीं है आपके लिए, लेकिन देवशास्त्र गुरु हैं। अभी आप जीवित हैं, देवशास्त्र गुरु जीवित हैं, और जब तक देवशास्त्र गुरु हैं तब तक सब कुछ है। यहां पर पंचम काल के अंतिम समय तक देव रहेगा, अंतिम समय तक गुरु रहेगा, अंतिम समय तक शास्त्र रहेगा। उसकी कीमत जिसने उसका उपयोग करना सीख लिया वो उसको पालेगा, बाकी किसी के हाथ में वो चीज आने वाली नहीं है। जिंदगी जिंदगी हमारी बीत गई लेकिन कभी भी वो चीज हमारे हाथ नहीं आई, हम आज वो चीज प्राप्त करने की कोशिश करें।
Yeah.